कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सही गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम हरे कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सति हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सति हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकं च चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Whatever flip charts are ready, he can bring at least the first two. Okay. Hare Krishna. कल हम शुद्ध भक्ति के लक्षणों के बारे में सुन रहे थे। आपको याद है कोई लक्षण शुद्ध भक्ति के कल की चर्चा से? एक एक शब्द में बोलिए, एक एक लक्षण, ये दो तीन शब्द में। अन्य अभिलाषा कोई नहीं होनी चाहिए। किससे अन्य नहीं होनी चाहिए? किस चीज से अन्य नहीं होनी चाहिए? कृष्ण सेवा से अन्य कोई नहीं इच्छा होनी चाहिए। और हाँ, कोई भी इच्छा नहीं। ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान कर्मादि नाम, ज्ञान कर्म आदि, इन सब चीजों से ये भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, आवृत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कपिल देव ने क्या कहा? झूठी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि भक्ति आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का कार्य है, और आत्मा के लिए कोई भौतिक उपाधि नहीं होती है कि आत्मा भारतीय है, अमेरिकन है इत्यादि। और क्या कपिल देव ने क्या कहा? कपिल देव इसका मतलब है मनोगतिर अविच्छिन्ना। अविच्छिन्ना मतलब बिना कोई रुकावट के, कि शुद्ध भक्ति के पथ में कोई भी अड़चन या बंधन या रुकावट नहीं आ सकती है, अनऑब्स्ट्रक्टेड। जिस तरह गंगा सागर की ओर बहती जाती है, बीच में कुछ भी क्यों ना आए, ठीक उसी तरह से शुद्ध भक्ति का लक्षण ये है कि जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, भगवान का गुणगान सुनने मात्र से उसका मन बहने लगता है भगवान की ओर। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रेमा भक्ति के बारे में। प्रेम भक्ति के विभिन्न स्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्ति के तीन स्तर, ठीक है। अभी चैतन्य महाप्रभु संक्षिप्त रूप में यहाँ रूप गोस्वामी को कहते हैं, और इसके बारे में विस्तार में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है कि शुरुआत से लेकर अंत तक भक्ति के ये तीन स्तर हैं। सबसे पहला है साधन भक्ति। साधन भक्ति ये मूल रूप से श्रवण कीर्तन आदि के ऊपर आधारित है। इसकी परिभाषा कौन से श्लोक में है आप बता सकते हैं? साधन भक्ति में जो कार्य होते हैं कौन से कार्य होते हैं? प्रहलाद महाराज का ये श्लोक सबको मालूम है ना, तो हम सब साथ में बोलेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्ह नवलक्षणा। तो नौ लक्षण है ये भक्ति के। कौन से भक्ति के? साधन भक्ति के। भक्ति हमारे लिए एक साधन है और साध्य भी है। साधन मतलब वो चीज या वो मार्ग जो कि किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है, और साध्य है हमारा उद्देश्य जिसके लिए हम साधन का उपयोग करते हैं। लेकिन भक्ति के इस विषय में साधन और साध्य दोनों एक ही हैं। तो साधन की अवस्था में जब साधक श्रवण कीर्तन आदि करता है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के बाद वह श्रवण कीर्तन त्याग देता है, ऐसा नहीं है, बल्कि और अच्छी तरह से शुद्धता से वो श्रवण कीर्तन करता है। आपको याद होगा जब भक्ति लता की बात चल रही थी तो महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भक्ति लता गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है, वहां पर कृष्ण प्रेम का फल भी पका हुआ मिल जाता है और उसका स्वाद भी लेने लगता है माली, फिर भी श्रवण कीर्तन का जल देने में वो लापरवाही नहीं करता है, श्रवण कीर्तन करते रहता है वो, क्योंकि श्रवण कीर्तन ये साधन भी है और साध्य भी है। लेकिन शुरुआत में ऐसे साधन करके फिर धीरे धीरे से प्रगति होने लगती है। अगर हम उन सारे चीज़ों से बचें जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी थी, अपराधों से बचें और तरह तरह के उपशाखाएं जो हैं उनसे हम बच के रहें, तो हमारी प्रगति शीघ्र ही होगी। और ऐसे करते करते हम दूसरे स्तर में पहुंचेंगे जब भक्ति के भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, और इस स्तर को कहते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति में ऐसे सारे भक्ति के भाव प्रकट होने लगते हैं स्वाभाविक रूप से। भक्त को कोई बाहरी प्रयास, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। बिन चाहे उसके नियंत्रण में न होकर ऐसे लक्षण उसके हृदय में, उसके शरीर में, मन में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण, कोई रोमांच खड़े होने, रोंगटे खड़े हो जाने, और अश्रुधारा, और कंपन, शरीर का कंपन, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाना। लेकिन उसके कौन से लक्षण हैं? यही है एक्सेसिव। किस तरह का एक्सेसिव? कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंसू बहना, ये सब थोड़े लक्षण हैं जिनके बारे में बाद में जाके हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कृत्रिम रूप से नहीं किए जा सकते। कोई व्यक्ति अभी अभी आए भक्ति में फिर ये सब करने लगेगा, ठीक नहीं है। या कई साल रहने के बाद भी अगर कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली कोई दिखावे के लिए करना चाहे, तो ये भक्ति नहीं है। प्रभुपाद कहते थे ऐसे तथाकथित जो भाव है ये वैदिक शास्त्रों के सिद्धांतों को धो डालते हैं। लेकिन सच्चा जो भक्त होता है श्रवण कीर्तन आदि करके इस भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभी भी आगे बढ़ना है भक्त को, अभी भी संभावना है कि वो उसका पतन हो जाए भक्ति से। भाव भक्ति इतना ऊंचा स्तर है, फिर भी संभावना है पतन की। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? कौन से भक्त ने? भरत महाराज। भरत महाराज ने भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के पश्चात उनका पतन हुआ, और अंततः प्रेम भक्ति, ये शुद्ध भगवत प्रेम है प्रयोजन, हमारे सारे साधन का साध्य, इसका उद्देश्य। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आत्मा तरस रही है, ये हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, जिसके लिए हर एक जीव अनादि काल से तड़प रहा है, लेकिन अज्ञानवश वो जान नहीं पा रहा है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। तो ठीक है, ये तीन स्तर हुए। और अब हम आते हैं प्रेम भक्ति के अलग अलग स्तर। प्रेम भक्ति को प्राप्त करके भी, प्रेम भक्ति के अंदर भी कई स्तर होते हैं। प्रेम भक्ति में भी धीरे 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 से एक के बाद एक स्तर होते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। तो आइए, प्रेम भक्ति के कौन से विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये देखें कि साधन भक्ति में से आगे बढ़ते बढ़ते कौन से स्तरों से गुजरते हुए हमें प्रेम भक्ति में आना है। सबसे पहले श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। ये श्लोक आपने सुना है ना, ये क्रम। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब थोड़ी बहुत एक थोड़ा एक झुकाव होना चाहिए भक्ति के लिए। भक्तों में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए, भक्तों की थोड़ी बहुत प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, ये भक्त लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आदौ सबसे पहले श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा। ये मजबूत श्रद्धा नहीं है, बहुत थोड़ी सी अल्प श्रद्धा है ये। और ऐसी श्रद्धा की वजह से भगवान कोई ऐसी योजना या ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि ये भक्त, ये व्यक्ति साधु संग को प्राप्त कर लेता है। उसको भक्तों का संग मिल जाता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो भक्तिलता बीज पाने की संधि उसको मिल जाती है, साधु संग। तो भक्तों के संग में आकर व्यक्ति क्या करता है, कौन से कार्य होते हैं भक्तों के संग में? जब कोई व्यक्ति किसी खेल के मैदान में जाता है तो क्या करता है? खेलता है। कोई बाजार में जाता है तो क्या करता है? खरीदता है कुछ दुकानों से। जब भक्तों के संग में जाता है तो क्या करता है? भजन क्रिया, भजन के अलग अलग क्रियाएं करता है। जैसे कि इनका वर्णन अभी किया, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भगवान कृष्ण के। तो ऐसे भजन क्रिया करते करते, ऐसे नहीं कि भजन क्रिया करते करते साधु संग को त्याग देता है, श्रद्धा को त्याग देता है, नहीं, ये बढ़ते जा रहे हैं। श्रद्धा उसकी बढ़ती जा रही है, श्रद्धा की वजह से साधु संग मिलता है, साधु संग में भजन क्रिया करता है। और जैसे जैसे वो भजन क्रिया करता है, साधु संग के प्रति आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है, तो साधु संग भी बढ़ता है उसका, और भक्तों का संग करने का इच्छुक हो जाता है व्यक्ति। फिर भजन क्रिया करते करते क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है उसके जीवन में? क्या फर्क पड़ता है? उसकी आदतें बदलने लगती हैं। कैसे? बुरी आदतें, जो भी जितने भी अनर्थ हैं, अनर्थ मतलब जो आवश्यक नहीं है व्यक्ति के लिए, और जो केवल एक बोझ हैं, जो हानिकारक हैं, जो केवल व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये सारे चीजें अनर्थ हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये गंदगी है हृदय के लिए, मैल है। तो अनर्थों का निवारण होने लगता है, अनर्थ निवृत्ति। जैसे जैसे व्यक्ति भजन क्रिया को अपनाता है, भगवान का नाम लेता है, भागवत श्रवण करता है, अर्चा विग्रह की सेवा करता है इत्यादि, तो वैसे ही शनै शनै उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, पवित्र हो जाता है, सारे अनर्थ नष्ट होने लगते हैं। तो इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। ये भी धीरे धीरे से होता है, ऐसे नहीं कि बस भजन क्रिया शुरू किया और एकदम से हृदय शुद्ध हो गया। तो धीरे धीरे से होता है, भक्त जो है प्रगति करने लगता है, क्रमशः उसका हृदय शुद्ध होते 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 फिर उसकी भक्ति में जो है, भक्ति मार्ग में, भक्ति की पद्धति में, भगवान कृष्ण में, भगवान के नाम में इत्यादि श्रद्धा अब तीव्र हो जाती है। एक प्रकार की दृढ़ता उसके मन में आ जाती है। इस दृढ़ता को, दृढ़ विश्वास को निष्ठा कहते हैं। अब भक्त को भक्ति से हिलाना मुश्किल है, पतन हो सकता है, अवश्य हो सकता है, परंतु उसकी निष्ठा अब काफी मजबूत हो गई है। इतना आसान नहीं है
उसको हिलाना भक्ति मार्ग से। और जैसे वो भक्ति करते रहे, भजन क्रिया जारी रखता है साधु संग में, और भी अनर्थों का निवारण होते रहता है, निष्ठा भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कृष्ण नाम और कृष्ण के प्रति उसके हृदय में, उसके चित्त में रुचि जागृत हो जाती है, स्वाद उसको स्वाद लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई बुरी आदत पहले जब लग जाती है तो शुरुआत में उसको अच्छा नहीं लगता। लोग शराब पीना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में उनको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। जैसे कई नवयुवक हैं, वो किसी गलत संग में जाते हैं तो शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे करते करते बाद में इस चीज़ में उनको रुचि आ जाती है। फिर किसी को बोलना नहीं पड़ता उनको कि ये करो, खुद ब खुद चोरी चोरी वो कर लेते हैं, चुप चुप के कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति में भी एक रुचि आ जाती है, बहुत तीव्र रुचि, जो स्वादिष्ट है, भक्ति का स्वाद बहुत मीठा लगने लगता है और भी ज़्यादा। इसके पहले निष्ठा की अवस्था तक व्यक्ति को थोड़ी बहुत रुचि तो मिलती है, थोड़ा रस तो मिलता है, लेकिन केवल अपने बुद्धि के बल से, अपने दृढ़ता से, अपने एकाग्र चित्त बनाकर किसी न किसी तरह से वो संयम से वो करने लगता है साधना। लेकिन जब रुचि के स्तर में आता है तब ये ज्यादा नेचुरल, स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि उसको स्वाद अब आ रहा है खुद ब खुद भक्ति का। अब किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं, उसको उठो उठो मंगल आरती है, जब मैं सो रहे हो उठो उठो तो बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, खुद ब खुद उसको इतनी रुचि इसमें है कि वो करने लगता है। और जैसे रुचि बढ़ती जाती है वैसे आसक्ति आ जाती है उसको, अब वो किसी भी अवस्था में कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अब आसक्त हो गया है पूरी तरह से। और जैसे कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। अगर विरक्ति प्राप्त करना है हमें संसार से, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे आसक्ति को प्राप्त करना ये काफी ऊंचा स्थान है। तो ये सारे जो 3, 3, 6 और 7, ये 7 स्तर हैं, ये साधन भक्ति में आते हैं। और भी आगे जब प्रगति करने लगता है तो भाव भक्ति के स्तर में पहुंचता है, और भाव भक्ति के बाद में फिर प्रेम भक्ति के स्तर में आ पहुंचता है। तो देखिए क्रम से ये कितने सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर इसका विश्लेषण किया हुआ है। अभी हम किस स्तर पे हैं, हम लोग के कौन से स्तर में हैं, बोलिए। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति के बीच में अवश्य श्रद्धा तो है। ऐसा नहीं कि एक स्तर में होने से हम दूसरे, इसके पूर्व जो स्तर हैं उनको हम त्याग देते हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने भजन क्रिया अब छोड़ दिया, अब हो गया। जैसे चौथी कक्षा का विद्यार्थी जो है तीसरी कक्षा के पढ़ाई को छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे वो बढ़ते रहता है वैसे भजन क्रिया और भी अच्छी तरह से करेगा, साधु संग और भी अच्छी तरह से करेगा, श्रद्धा भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग ये चारों चीजें कर रहे हैं, पहले 4, निष्ठा भी थोड़ी बहुत है ना, निष्ठा नहीं होती तो कैसे आते आप यहाँ पर। कोई 1 साल से भक्त है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, 20 साल से, निष्ठा नहीं होती तो कैसे टिके हुए रहते हैं भक्ति में, संभव नहीं है। थोड़ी बहुत निष्ठा है, रुचि है, थोड़ा तो है ना, थोड़ा तो है, अच्छा लगता है, आसक्ति भी थोड़ी बहुत है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ है। तो हम अभी ज्यादा अनर्थ निवृत्ति के स्तर में प्रयास कर रहे हैं, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो इस प्रकार से प्रगति करते करते भाव भक्ति को पार करके व्यक्ति प्रेम भक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो आइए अब, लेकिन इसके लिए हाँ ठीक है, प्रेम भक्ति का विश्लेषण करते हैं। अब प्रेम भक्ति को को प्राप्त करने के बाद प्रेम भक्ति के अंदर जो अलग अलग स्तर हैं उनको समझने के लिए एक आपको सरल उदाहरण देंगे, एक उपमा, जिससे कि हम समझ सकेंगे कि कैसे प्रगति होती है। और वो है शक्कर का उदाहरण। मिश्री और लॉजेंज कैसे बनाते हैं आप जानते हैं ना, ये क्रम है। शक्कर की विभिन्न अवस्थाएं, सबसे पहला क्या है, गन्ने का बीज। गन्ने का बीज जो है वो किसान बो देता है खेत में, फिर क्या आता है, गन्ना। फिर गन्ने से क्या निकालते हैं हम, रस निकालते हैं। फिर रस को क्या करते हैं, उबालते हैं। कितने देर, काफी देर उबालते हैं। जब वो उबलता है, काफी उबलने के बाद फिर गाढ़ा हो जाता है, अभी भी तरल है, तो इसको तरल गुड़, गुड़ जैसा बन जाता है, जैगरी गुड़, तरल गुड़। और उसको फिर और उबालने से जो भी उसमें तरलता है, जो पानी है, वो निकल जाता है, फिर वो ठोस गुड़ बन जाता है। और गुड़ के बाद उसको उसका परिवर्तन और करते हैं, उसको शक्कर बनाते हैं। और शक्कर बनने के बाद उसको खांडसारी बनाते हैं। खांडसारी मतलब मिश्री और शक्कर के बीच में जो स्तर होते हैं, आपने देखा है, बड़े बड़े ऐसे टुकड़े होते हैं शक्कर जैसे ही, क्रिस्टल टाइप के, बड़े टाइप के होते हैं, खास करके खांसी वगैरह के लिए सब अच्छा लेते हैं। और फिर उसके बाद मिश्री, मिश्री सबने खाया है ना, और मिश्री से भी और भी उसको गाढ़ा करके और उत्तम मिश्री, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लॉजेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि जैसे 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 हम आगे 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 चलते रहते हैं तो शक्कर और भी गाढ़ा, इसका मिठास और गाढ़ा 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 होते जाता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्रेम भक्ति के स्तर में एक से बढ़कर एक इसके अंदर जो स्तर है वो उसमें प्रेम और भी गाढ़ा और भी गाढ़ा और भी गाढ़ा होते जाता है। तो आइए, क्या महाप्रभु के, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या कहा इस बारे में हम सुन लेते हैं। प्रेम भक्ति के स्तर, ये सब प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के आ जाते हैं, करने के बाद आ जाते हैं, याद रखिए। ये सब अलग अलग नाम हैं, इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय काफी ऊंचा है। और केवल एक जानकारी के लिए हमें जानना चाहिए, आगे चलकर कभी हम अपने आप पढ़ लें चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु, तो हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये सब अलग अलग स्तर हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, अनुभाव ने वास्तव में महाभाव होना चाहिए, ठीक है, महाभाव। आखिरी सातवां नंबर जो है वो महाभाव है। और इसके आगे भी ये सब कुल मिलाकर, इस सारे चीजों को कुल मिलाकर इसको स्थाई भाव कहते हैं। स्थाई भाव जो स्थिर है, जब ये सारा भाव जो है बिल्कुल पक्का हो जाता है और भक्त कभी भी इससे हिलेगा नहीं, तब स्थाई भाव को प्राप्त करता है। बिल्कुल सुदृढ़ अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो उसको स्थाई भाव कहते हैं। और उस स्थाई भाव को और भी रसीला बनाने के लिए, और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए, और ऐसे कई चीजें हैं जिनको के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये चार चीजें हैं जो कि उस स्थाई भाव को, स्थाई भाव मतलब इन सब का मिलन। लेकिन पीछे वजह वो खुला रखिए एक मिनट, हाँ दो मिनट के लिए बस, केवल। तो ये इन सब को मिलाकर जब ये बहुत परिपक्व हो जाता है, इसको स्थाई भाव कहते हैं। और स्थाई भाव में और भी ऐसे कई गुण आते हैं जो कि इसको और स्वादिष्ट बनाते हैं, जिनका नाम है विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इनके बारे में भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक जानकारी के लिए पुनः उनका उल्लेख हम कर रहे हैं संक्षिप्त रूप में। ठीक है, व्यभिचारी इसके लिए एक सरल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे स्थायी भाव मतलब भक्त का प्रेम बिल्कुल सुदृढ़ है, लेकिन बैकग्राउंड में है, पीछे है। लेकिन अनुभाव विभाव मतलब ऐसे कोई चीज जिसकी वजह से उसका प्रेम पुनः बाहर प्रकट आता है, प्रकट हो जाता है। एक सरल उदाहरण, एक माँ है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम हृदय के पीछे पीछे भाग में है, लेकिन अचानक बच्चे का चेहरा देखती है तो वो प्रेम उभर आता है, फिर से बाहर आ जाता है। है प्रेम पहले से भी है, लेकिन अब बाहर आ जाता है। तो बच्चे का चेहरा देखना एक विभाव, इसको विभाव कहते हैं। फिर अनुभाव, अनुभाव मतलब नहीं ये नहीं, इसको कवर करके रखता ताकि लोग टेंशन में भी डिस्ट्रैक्टेड। तो विभाव में क्या होता है कि ऐसे कोई चीज होती है जो कि भक्त के प्रेम को प्रेरित करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, उत्तेजित करने के लिए वो कार्य करता है। जैसे माँ अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो जो पहले से हृदय में प्रेम है वो बाहर आता है। तो विभाव के बाद अनुभाव, अनुभाव मतलब जब अब माँ देखती है बच्चे को, फिर उसके बाद कुछ करती है, प्रेम तो आता है हृदय में, फिर कुछ करती है, शायद जाके वो आलिंगन कर ले अपने बच्चे को, तो जो वो कार्य करती है उसके बाद उसको अनुभाव कहते हैं। और कृष्ण भक्ति में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माँ जब आलिंगन करती है फिर तरह तरह के उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं बच्चे के वात्सल्य प्रेम से। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम में जब भक्त ऐसे कृष्ण को देखता है तो जो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में है वो बाहर चले आता है, फिर वो किसी न किसी तरह के कार्य करता है। और फिर तीसरा है सात्विक, इसके बारे में हमने चर्चा की। सात्विक विकार, उसके शरीर में तरह तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदर्शित किया अंतलीला में, जगन्नाथपुरी में। तो ये काफी ऊंचा विषय है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसको सात्विक कहते हैं। और व्यभिचार, ये तरह तरह के परिवर्तन जो कि उस स्थायी भाव में रहने वाले कृष्ण प्रेम को ज्यादा मीठा, ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु अब वर्णन करते हैं कि इस प्रेम भक्ति के स्तर में ही व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ सच्चे रस का आदान प्रदान कर सकता है। अब व्यक्तिगत रूप से उसका एक संबंध कृष्ण के साथ बन जाता है। ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट के लिए आप लिखना बंद करें और इस बात को ध्यान से समझें कि प्रेम भक्ति के स्थायी भाव के अवस्था में प्राप्त को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति की, किसी भी भक्त की व्यक्तिगत संबंध जो है कृष्ण के साथ स्थापित हो जाता है और वो किसी रस में, किसी एक भाव में भगवान की सेवा करने लगता है, किसी भी एक अमुक भाव में, विशेष भाव में। तो कौन से रसों में, कौन से भावों में भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनका वर्णन यहाँ पे है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसे पांच मुख्य रस हैं, अब चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये पांच प्रमुख रस हैं, इनके बारे में तो आप सबने सुना होगा। कितने भक्तों ने पांच रसों के बारे में सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। तो आप सब जानते हैं पांच रसों को। शांत रस, इसे रति भी कहते हैं वास्तव में। रति मतलब आसक्ति, वास्तविक शब्द है रति। जब शांत भाव में या दास्य भाव में एक आसक्ति हो जाती है भगवान के प्रति तो उसको शांत रति या दास्य रति कहते हैं। फिर सख्य रति, वात्सल्य रति, मधुर रति, ये सभी अविरोध प्रेम के दिव्य स्तर पर आधारित हैं। मतलब कोई व्यक्ति केवल भाव भक्ति के स्तर पर है या साधन भक्ति के स्तर पर है और वो कहेगा कि जी मैं तो मधुर रस में भगवान से प्रेम करता हूं, जी नहीं, समय के पहले, उस स्तर को पहुंचने के पहले ये रस जो है, हमारी रति जो है ऐसे प्रकट नहीं होगी। जो लोग ऐसे करते हैं कि समय से पहले ही अपने आप को एक अमुक रस में, खास करके मधुर रस में सोच लेते हैं, ये प्राकृत सहजीय लोग हैं। वृंदावन में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं। हृदय में कई भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन ऐसे नकल करते हैं उन भक्तों का जो कि अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, कृष्ण से रासलीला करते हैं, तो आंसू बहाते हैं अपने आंखों से, ये सब भावुकता है। ये सच्चा जो रस है ये केवल प्रेम भक्ति के स्तर में ही प्राप्त हो सकता है। तो आइए इन पांचों रसों के थोड़े लक्षणों के बारे में हम सुनते हैं। पांच रस कौन से? ये पांच रस समझ गए आप? इसका सिद्धांत क्या है कि हर एक व्यक्ति भगवान के साथ, हर एक व्यक्ति का हर एक भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। हर एक व्यक्ति का मतलब किसका? आत्मा का संबंध है। अब ये संबंध कौन से भाव में है, कौन से रस में है, इस समय हम नहीं जानते। इस संसार में भी हम देखते हैं कि ऐसे कई संबंध है, कई भाव है संबंध में, जैसे पति पत्नी का संबंध है, जैसे मित्रों का संबंध है, जैसे एक मालिक और नौकर का संबंध है, दो मित्रों का संबंध है, तो इस संसार में भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ के जो संबंध हैं वो भगवान के धाम के संबंधों के विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। सच्चा संबंध तो ये सारे पांचों संबंध जो हैं वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। आत्मा का संबंध भगवान से इन पांच तरह के रसों में हो सकता है। अब हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है हमें नहीं मालूम। जब हम प्रेम भक्ति के स्तर में प्राप्त करेंगे तब भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रफुल्लित कर देंगे इस सत्य को कि हम, हमारा रस भगवान के साथ शांत रति में है, दास्य में है, किस कौन से रस में है। ठीक है, तो इन भगवान के धाम में उनके शुद्ध भक्त इनमें से कोई एक रस में भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो आइए इन पांचों रति या रसों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पलट देंगे जरा, तो सबसे पहले है शांत रति। है ना, उसमें देखिए, दिखाइए जरा, अभी अभी जो दिया उसमें नहीं। अच्छा नहीं था, अच्छा ठीक है, दिया तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, ओके। ठीक है, सब ने लिख लिया। तो शांत रति के लक्षण ऐसे हैं, समस्त शंकाओं एवं भौतिक आसक्तियों से मुक्ति। कोई संशय नहीं है अभी आध्यात्मिक जीवन के बारे में, भौतिक जीवन से पूरी तरह से निरासक्ति हो जाती है, भगवान की महत्ता का ज्ञान हो जाता है और पूर्ण श्रद्धा हो जाती है भगवान में, अटूट श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। लेकिन भगवान की सेवा की भावना नहीं होती है शांत रति में। तो शांत रति में जो भावना है वो सेवा विहीन है। सेवा भावना अभी तक शांत रति में विकसित नहीं होती है। साकार एवं निराकार के बीच की अवस्था है, तटस्थ अवस्था है शांत रति में। और इसलिए भगवान के साकार रूप की उपेक्षा परमात्मा के निराकार रूप से अधिक आसक्ति, परमात्मा या निराकार जो कम आगे बढ़े हुए हैं वो निराकार में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो परमात्मा में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इनके दो प्रमुख लक्षण हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृष्णा त्याग और कृष्ण निष्ठा। तो शांत शांत रति की ये दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तृष्णा त्याग और कृष्ण निष्ठा। तो तृष्णा त्याग मतलब क्या है, किस चीज को त्यागना। तृष्णा क्या है? प्यास। किस चीज के लिए प्यास? भौतिक भोग के लिए। तो जो प्यास है, जो भूख है, जो कामना है, उसको त्याग देते हैं पूरा, पूरी तरह से शून्य, तृष्णा त्याग। दूसरी तरह से कृष्ण निष्ठा, भगवान में पूरी निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है। ये दो प्रमुख लक्षण हैं शांत रस के, शांत रति के। और शांत भक्तों के उदाहरण नव योगेंद्र, नव योगेंद्र, इनके नाम कहां पर सुने हैं आपने? हाँ, कौन से स्कंद में? भागवत के पांचवें नहीं, इलेवेंथ, एकादश, ग्यारहवें स्कंद में नव योगेंद्र किन को उपदेश देते हैं? यदु नहीं, महाराज निमि, महाराज निमि को। महाराज निमि उनसे नौ प्रश्न करते हैं और ये नौ योगेंद्र उनको क्रम से एक एक उत्तर देते हैं। ये नौ योगेंद्र किन के पुत्र हैं? ऋषभ देव महाराज के पुत्र हैं। बहुत अच्छा। और एक उदाहरण शांत भक्त के, चार कुमार, चतुष्कुमार। ये चतुष्कुमार किन के पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के, वरिष्ठ पुत्रों में से हैं। देखने में कैसे हैं? पांच साल के बच्चों के समान हैं। तो ये शांत भक्त, जब ये शांत भक्त, हालांकि ज्यादा निराकार ब्रह्म में या परमात्मा में रुचि लेते हैं, जब वो भगवान के भक्तों से संग करते हैं तो हो सकता है फिर वो और आगे बढ़ सकते हैं और अगले स्तर दास्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर शांत रति में होकर भी वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनको आनंद तो मिलता है, लेकिन इतना आनंद नहीं मिलता है जितना कि दास्य रस में स्थित भक्तों को मिलता है। वो क्यों है वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये हुई शांत रति के लक्षणों की बात। अब आगे दास्य रति, दास्य रति के लक्षण। हमने देखा कि शांत रति में हालांकि तृष्णा त्याग है, कृष्ण निष्ठा है, भगवान की महत्ता का पूर्ण ज्ञान है, परंतु सेवा भाव विकसित नहीं है। लेकिन दास्य रूप, दास्य रस में सेवा भाव विकसित हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है सख्य रस में, क्षमा कीजिए, दास्य रस में और शांत रस में, कि दास्य रस में सेवा भावना का उद्गम होता है। व्यक्ति अब भगवान की सेवा करना चाहता है तीव्रता से, पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर समझता है। और इस समय भक्त निराकार रूप से परे ज्ञान में सक्षम हो जाता है। अब वो समझता है कि ये निराकार परमात्मा से परे मैं भगवान के स्वयं व्यक्तिगत रूप की सेवा करना चाहता हूँ, चाहे वो विष्णु हो, कृष्ण हो, वैकुंठ भाव हो, गोलोक भाव हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है भक्त।
तो परे
जाने में, उसके परे होने में, शांत रस में जो जो भक्त होते हैं वो निराकार या परमात्मा से आसक्त रहते हैं थोड़ा बहुत। अब जब वो दास्य रस को प्राप्त करता है तो उस निराकार परमात्मा के परे हो जाता है, उससे ऊंचे पहुंच जाता है, भगवान के व्यक्तिगत रूप को जान लेता है, उनके व्यक्तित्व को जान लेता है और उनकी सेवा करना चाहता है। ठीक है, तो सेवा के कारण भक्त भगवान को शांत रति के भक्त से अधिक जान पाता है एवं फलस्वरूप अधिक आनंद का अनुभव करता है। इसका मतलब है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान को जान पाते हैं। सेवा करने से ही भगवान का ज्ञान हो सकता है, सेवा किए बगैर ज्ञान संभव नहीं है। तो क्योंकि दास रस में स्थित भगवान की सेवा करता है इसलिए वो भगवान को अधिक जान पाता है, शांत रति के भक्त की उपेक्षा। और इसलिए ज्यादा सेवा करने की वजह से, ज्यादा भगवान को जानने की वजह से उसको आनंद भी ज्यादा मिलता है, ज्यादा दिव्य आनंद को प्राप्त कर देता है। और उसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दूध अगर साधारण हो लेकिन जैसे जैसे उसको उबाला जाता है वो घना होते जाता है, फिर धीरे धीरे से उसको खीर बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से शांत रति से लेकर दास रति में अब दूध या ये भाव जो है घना होता जाता है, इसलिए ज्यादा मीठा, ज्यादा स्वादिष्ट होने लगता है। और भगवान को पूजनीय मानता है और स्वयं को सदैव भगवान की कृपा पर आश्रित समझता है, ये दास रस की भावना है। मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, उनको संतुष्ट करना। तो दास रस का प्रमुख लक्षण क्या है? सेवा भावना, सेवा। ठीक है, शांत रति के क्या दो गुण थे? तृष्णा त्याग, कृष्ण निष्ठा। ठीक है, तृष्णा त्याग, कृष्ण निष्ठा। दास रस का क्या लक्षण है?
सेवा।
तो शांत रति न तो भौतिक है और न आध्यात्मिक, किंतु दास रति पूरी तरह से आध्यात्मिक, क्योंकि शांत रति तटस्थ स्तर है ना, न्यूट्रल। लेकिन अब दास रस में प्रवेश करके पूरी तरह से शत प्रतिशत आध्यात्मिक हो जाता है। इसके उदाहरण शांत दास भक्तों के उदाहरण गोकुल में या वृंदावन में रक्तक, पत्रक, चित्रक, वृंदावन में ये भगवान के दास रस के भक्त हैं। माता यशोदा लेकिन दास भाव में, सखा तो कम कम उम्र वाले हैं, बड़े उम्र वाले हैं, उनके सेवक हैं, माता यशोदा ने उनको सब नियुक्त किया हुआ है, तुम इनकी सेवा करो। और द्वारका में है दारुक एक उदाहरण, जो उनके सारथी हैं, उनके सेवक भी हैं। ठीक है, तो शांत रस और दास रस। अब इसके बाद कौन सा है? सख्य रस। साख्य ने सख्य, सख्य रति के लक्षण। भगवान से धनिष्ठता, भक्त स्वयं को भगवान के समान मानता है। तो दास रस में भक्त भगवान को क्या मानता है?
दास।
भगवान को क्या मानता
है?
अपने स्वामी, अपने स्वामी मानता है, अपने को अपने आप को दास मानता है, भगवान को पूजनीय समझता है, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझता है भगवान को। लेकिन सख्य स्तर में क्या है? सख्य रति में भगवान को समान समझता है, अपने ही लेवल पे, अपने ही स्तर पे समझता है। ये बहुत विशेष बात है, ये मित्र का संबंध है। इसमें भगवान को अपना मित्र समझता है भक्त, तो प्रगत अवस्था में भक्त भगवान के साथ मजाक भी करता है और इसे कोई गलत नहीं मानता। कभी कभी हम अगर किसी भगवान के प्रति अपराध कर बैठते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता ना, अरे हमने अपराध कर दिया भगवान के प्रति, तो हमारे लिए ठीक है वो, ऐसे हमें बुरा लगना चाहिए अगर हम कोई अपराध करें भगवान के प्रति। लेकिन सख्य रस में जो भक्त होते हैं वो भगवान को अपने समान समझते हैं, कभी कभी मजाक भी करते हैं उनका। जैसे कि कभी कभी भक्त, कोई ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण से मजाक करता था, अपने आप को ज्यादा कुछ तुम शक्तिशाली नहीं समझो, हम लोग तुम्हारे साथ में थे इसलिए तुम इस असुर को मार पाए, मेरी भी शक्ति कोई कम नहीं है। मैं भी मेरे कमाल तुमको दिखा सकता हूँ कभी 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 मजाक भी करते हैं ऐसे। और इस सख्य रस के उदाहरण वृंदावन में श्रीदाम सुदाम मधुमंगल कितने सारे हैं, और द्वारका में भीम अर्जुन इत्यादि, द्वारका हस्तिनापुर आदि में, ठीक है। ये है सख्य रस। अब वात्सल्य मधुर नहीं है ना, था शायद उसमें नहीं है ना। अब अगले इसके चार्ट नहीं है तो वात्सल्य इसके बाद कौन सा है, वात्सल्य। तो वात्सल्य के गुण क्या है, तो यहां पर सख्य रस में ये एक विशेष गुण क्या है, सख्य में और दास्य में अंतर क्या है, फर्क कहां पड़ी है। अपने आप भगवान को समान मानता है तो इसमें भगवान के प्रति एक निकटता आ जाती है, बहुत करीब आ जाता है, इसलिए ममता कि ये मेरा है, एक मेरापन आ जाता है ममता। तो सख्य रस की विशेषता है, विशेष गुण है ममता, ममता। कृष्ण मेरे हैं, ठीक है ना, निकटता। इसके आगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भक्त प्रेम जो है और भी गाढ़ा होने लगता है। और यहां तक तो देखिए, दास में भगवान को अपने से श्रेष्ठ समझता है भक्त, सख्य में अपने समान समझता है भगवान को, लेकिन वात्सल्य में भगवान से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है ना? है ना, कितने सुंदर बात। लेकिन हमें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वात्सल्य अवस्था में जो भक्त होता है वो सोचता है कि भगवान मेरे ऊपर निर्भर है। कृष्ण को भगवान नहीं जानते, वो तो कृष्ण अपना बेटा ही समझते हैं। वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, और उस वात्सल्य भाव को बनाए रखने के लिए योग माया उनके हृदय में ये ज्ञान का आवरण कर देती है कि कृष्ण भगवान है। इसलिए वात्सल्य भाव के जो भक्त हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि ये कृष्ण भगवान है, और अगर कोई बोले भी वो विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे वात्सल्य भाव में जो भक्त होते हैं भगवान को निम्न स्तर के मानते हैं, वरिष्ठपन के दृष्टि से भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान का पालन करने वाला हूं, अगर मैंने रक्षा नहीं की तो कुछ गलत हो जाएगा कृष्ण के लिए, और कृष्ण हमारी कृपा के ऊपर निर्भर है। दास रस में भक्त भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है, और वात्सल्य रस में भगवान भक्त की कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। और भक्त सोचते हैं कि मुझे रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए, कभी कभी भगवान को आशीर्वाद भी देते हैं वो, कभी सर चूमते हैं, कभी सर पे हाथ रखते हैं। तो ये है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में कौन सी विशेष बात है, और भी निकटता बढ़ गई है। निकटता बढ़ने की वजह से ये एक शब्द, एक विशेष गुण अभी यहां आ गया, और उसको पालन कहते हैं, पालन। ये विशेष गुण है सख्य रति की, ठीक है ना। तो वात्सल्य रस के उदाहरण द्वारका में, वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज, और द्वारका में, द्वारका मथुरा में देवकी और वसुदेव, ठीक है। तो ये है वात्सल्य रस। और इसके आगे है माधुर्य, मधुर रस, जिसमें कि भक्त भगवान के साथ ऐसे रस में ऐसे प्रेम करता है जैसे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है। भगवान को अपना प्रेमी समझता है भक्त, न केवल अपना पुत्र, न केवल अपना मित्र, बल्कि भगवान को अपना प्रेमी समझता है। सबसे ऊंचा है ये प्रेम, सबसे शुद्ध, सबसे तीव्र, सबसे गाढ़ा हो जाता है प्रेम अब तक। और इसमें आगे जितने भी सारे गुण हैं वो सब अब और भी अधिक मीठे हो जाते हैं, और भी गाढ़े हो जाते हैं, और जितने भी ममता है वो और भी बढ़ जाती है, ममता की वृद्धि होती है। और इस अवस्था में जो भक्त है निज अंग अर्पण भी करता है भगवान के लिए, अपने सारे शरीर को भी अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है कृष्ण के संतुष्टि के लिए। तो ये विशेष गुण है मधुर रस की, निज अंग अर्पण। और इस मधुर रस में सारे अन्य गुण हैं, पूर्व जितने भी रसों के गुण हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आ जाते हैं इनके बारे में हम सुनेंगे। इसके लिए एक हमने चित्र बनाया है, शायद इससे आपको पता चले। इसमें हमने कई गोलाकार बनाए हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं। सबसे अंदर वाला गोल कौन सा है? शांत रस का। और शांत रस के दो गुण कौन से? तृष्णा त्याग और कृष्ण निष्ठा, ठीक है ना। और जब ये प्रेम और गाढ़ा हो जाता है तो दास्य रस में पहुंच जाते हैं, जो बाहर वाला गोलाकार है, ठीक है। और दास्य रस के कितने गुण हैं? कौन सा गुण है दास्य रस में? कितने गुण हैं? नहीं, हाँ, दास्य रस में तीन गुण हैं, सख्य रस के दो गुण और सख्य रस का एक गुण, तीन। क्योंकि ये गोलाकार देखिए एक दूसरे के अंदर है, तो अंदर वाले जो गोलाकार में गुण है वो तो बाहर वाले गोलाकार में होने ही चाहिए, सही है ना। तो शांत रस के जो दो गुण है वो तो है ही दास्य रस में, साथ साथ एक अधिक विशेष गुण है जो कि शांत रस में नहीं है, वो है सेवा। तो सख्य रस में तीन गुण हो गए, ठीक है, तृष्णा त्याग, कृष्ण निष्ठा और सेवा। आगे चल के सख्य रस, सख्य रस में एक और गुण की वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाता है, वो क्या है? ममता। तो अब सख्य रस में कितने गुण हुए?
चार।
और प्रेम जब तीव्र हो जाता है फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में वो कौन सा विशेष गुण है जो कि सख्य में भी नहीं है, दासी में भी नहीं, शांत में भी नहीं? पालन, प्रोटेक्शन। तो पूरे कितने गुण हुए वात्सल्य रस में?
पांच।
और अंततः मधुर रस या माधुर्य रस या श्रृंगार रस या कांता रस, अलग अलग नाम है इसके। तो इसमें कौन सी विशेष गुण है जो कि अन्यों में नहीं है लेकिन अन्यों के सारे गुण मधुर रस में सम्मिलित हैं? तो ये कौन सा है? निज अंग अर्पण। तो मधुर रस में कितने गुण हुए?
छह
गुण। तो बाहर वाले, सबसे बाहर वाले आकार में अंदर वाले जितने भी आकार उन सब के गुण इसमें है। तो इसलिए मधुर रस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर अन्य सारे रसों के गुण हैं। और इतना ही नहीं, ये गुण अब और अधिक और तीव्र और मीठे हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा कठिन हो रहा है आप सबके लिए कि आप समझ पा रहे हैं? है? सरल है ना। अच्छा, इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टांत देते हैं, उपमा देते हैं। और ये उपमा सृष्टि तत्व, सृष्टि के सृजन के बारे में है। अच्छा, ये बताइए पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, फिर जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश। अच्छा, अब तन्मात्रा कौन से हैं? You can remove it for the time. So their attention will get focused. सब लिखना शुरू कर देंगे। तो तन्मात्रा कौन से हैं? शब्द, गंध, रूप, स्पर्श। गंध हो गया, रस, पांच तन्मात्राएं हैं। तो पांच महाभूत और पांच रस, इनको जोड़िए। यहां पे कोई लिखेंगे? अच्छा, अब पहला लेंगे। पहला जो है आकाश, आकाश से संबंधित, या ठीक है पृथ्वी से शुरू करें सबसे। पृथ्वी में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो कि अन्यों में नहीं है?
गंध।
बारिश के समय आपने अनुभव किया होगा ना, जब वर्षा होती है तो मिट्टी का गंध आता है ना, आपको पता चलता है कि बारिश हुई है, क्योंकि वो गंध आ जाता है बरसात के समय, गंध। और फिर जल, जल में कौन सा विशेष गुण है? स्वाद, या रस, स्वाद। अच्छा, इसके बाद अग्नि। तो अग्नि में वो कौन सा गुण है, विशेष गुण? रूप, तन मात्राओं में से रूप, अग्नि में है रूप। सरल है ना, आप सब समझ पा रहे हैं ना। और उसके बाद है वायु, वायु में कौन सा गुण है? स्पर्श। जब ठंडी हवा बहती है तो हमको शरीर पर लगता है ना, अरे ठंडी हवा है, बहुत लू चल रहा है, गर्म हवा, स्पर्श। और फिर अंततः आकाश,
शब्द,
ध्वनि। ये सब इनके विशेष विशेष गुण हैं। अब आपसे हम और प्रश्न करने वाले हैं कि अब आकाश में ये एक गुण है ध्वनि या शब्द, लेकिन वायु में कितने गुण हैं? केवल स्पर्श है? चार? दो। कौन से दो? शब्द और स्पर्श वायु में है। इस तरह से धीरे 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 से सब बढ़ते जाएंगे। तो यू कैन पुट कॉमा और शब्द भी ऐड कीजिए। अच्छा, अग्नि में कितने गुण हैं? तीन गुण। कौन से? रूप तो है ही, रूप के साथ जो वायु में गुण है, आकाश में है, वो भी उनमें है। और फिर शब्द तीसरा, क्योंकि सृष्टि की रचना जो होती है कैसे होती है? सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, पहले सूक्ष्म वस्तु का निर्माण होता है और फिर धीरे 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 से स्थूल वस्तु का निर्माण होता है। तो सबसे सूक्ष्म कौन सा है? आकाश। इसलिए इसमें एक ही गुण है। इससे ज्यादा स्थूल वस्तु कौन सा है? वायु। तो इसमें दो गुण। उससे ज्यादा अग्नि। अब आगे जल, जल के अंदर कितने गुण? चार गुण। तो जल के अंदर अग्नि के गुण हैं, वायु के गुण हैं, आकाश के गुण हैं, और उसके अलावा एक विशेष गुण है स्वाद, जो अग्नि, वायु और आकाश में नहीं है। अच्छा, और पृथ्वी में कितने गुण हैं? पांचों गुण पृथ्वी में हैं, ठीक है ना? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द या ध्वनि, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जरा चार्ट देखें। अब इसी बात को एक चित्र के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे पहले उन रसों के बारे में किया गया था, तो ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं उस रसों के बारे में समझाने के लिए। सबसे अंदर वाला गोलाकार कौन सा है? आकाश। आकाश का कौन सा गुण है? ध्वनि या शब्द। इसके बाद में दूसरा कौन सा है? वायु। वायु का कौन सा गुण है, विशेष गुण? स्पर्श। उसके आगे अग्नि, अग्नि का विशेष गुण
रूप,
उसके आगे
जल,
जल का विशेष गुण
रस,
उसके आगे
पृथ्वी,
पृथ्वी का विशेष गुण
गंध।
तो सबसे बड़ा गोलाकार कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के कितने गुण हुए? पांचों गुण। जो भी अन्यों में है वो सब पृथ्वी में है। लेकिन जल में कितने गुण है? पृथ्वी के गुण है? जल में पृथ्वी के गुण नहीं है, लेकिन उनके पहले जितने भी हैं वो सब में है। तो ठीक उसी प्रकार से पांचों रसों में ऐसे गुण की वृद्धि होती है। अब वो दोनों चार्ट साइड बाय साइड लगाइए, एक के बाजू में एक लगाइए। तो ठीक है, ये उपमा आप समझ गए क्यों ऐसे महाप्रभु दे रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न इसके बारे में कोई संशय? तन मात्रा जो सेंस ऑब्जेक्ट्स विषय, सूक्ष्म विषय, जैसे रूप, आंख क्या करना चाहती है? रूप देखना चाहती है। कान क्या करना चाहते हैं? ध्वनि सुनना चाहते हैं। जिह्वा क्या करना चाहती है? स्वाद लेना चाहती है। शरीर, त्वचा क्या करना चाहती है? स्पर्श करना। और नाक गंध। तो जिनके पीछे हमारी इंद्रियां भागती हैं, इंद्रियों का विषय, उनका सूक्ष्म रूप, उनको तन्मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट के बारे में, दो चित्रों के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? ये अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए सारे रस तत्व को, आप आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। हाँ है, समझ आता जरूर है, लेकिन सूक्ष्म रूप से है, पृथ्वी में भी है। सारे जो सूक्ष्म तत्व, ये सब तत्व है ना, महाभूत, जो सूक्ष्म चीजें हैं, पानी में से भी ध्वनि जा सकता है ना। अब जो ऐसे मछलियां हैं वो आवाज करते हैं ना एक दूसरे को, पानी के अंदर, पृथ्वी के भीतर से भी आवाज जा सकता है। आप खटखट कीजिए और दरवाजे पे आपका कान रखिए तो उस लकड़ी के माध्यम से ध्वनि चलती है ना, उसी प्रकार से जल के माध्यम से भी चलती है, अग्नि के माध्यम से भी चलती है ध्वनि। अग्नि के माध्यम से जल ध्वनि नहीं जाएगी, अग्नि के माध्यम से भी जा सकती है, जैसे जल के माध्यम से जाती है, जैसे पृथ्वी के माध्यम से जाती है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, ट्रैवल थ्रू वाटर, ट्रैवल थ्रू फायर, लेकिन आकाश के बिना शब्द नहीं हो सकता। शब्द को जाना है, ध्वनि को अगर जाना है तो आकाश की आवश्यकता है। आकाश के बिना ध्वनि नहीं जा सकती इधर से उधर। लेकिन आकाश है तो, लेकिन अगर वायु है तो आकाश भी है, अग्नि है तो वायु आकाश है, जल है तो अग्नि वायु आकाश है, पृथ्वी है तो अन्य चार भी है, इसलिए उनमें सब आ जाते हैं सारे गुण। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव में से भी ध्वनि ना जा सकती है। सूर्य देव में भी कितने सारे प्राणी हैं ना, कितने सारे सूर्य लोक के निवासी हैं, वो भी आपस में बोल रहे हैं ना, तो वहां भी ध्वनि चल रही है ना, अग्नि है हालांकि, तो अग्नि के अंदर से भी ध्वनि जा सकती है, अग्नि के अंदर भी ये सारे गुण हैं, जो कि उनके जो निम्न श्रेणी के तत्व हैं उनमें जो भी गुण है वो अग्नि में भी है, वो जल में भी है, पृथ्वी में भी है। जैसे जल में ध्वनि हो सकता है, जैसे किसी कठिन पदार्थ में, पृथ्वी में जल ध्वनि हो सकती है, उसी प्रकार से अग्नि में हो सकता है।
अग्नि और स्पर्श,
अग्नि और
स्पर्श,
हाँ अवश्य है, क्योंकि अग्नि से नीचे है वायु, तो वायु के अंदर स्पर्श का गुण है तो अग्नि के अंदर आएगा ही। इसलिए यहां पर देखिए, रूप स्पर्श शब्द अग्नि के, ठीक है, अग्नि को छूने से जलन होता है ना। तब ये दो आप एक बार समझ गए तो आपकी बुनियाद अच्छी तरह से हो जाएगी। रस तत्व समझने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके पहले ठीक है लीजिए, और ऐसे ये पांच जो रस हैं इनको मुख्य रस कहते हैं, प्रमुख रस। लेकिन ऐसे भी सात अन्य रस हैं जिनको गौण रस कहते हैं, सेकेंडरी रस। गौण मतलब समझ गया, जो प्रमुख नहीं है, जो मुख्य नहीं है। ऐसे सात रस हैं जो यहां पर हम लिखेंगे। उसके लिए हमने चित्र नहीं बनाया हुआ है। ये सात रस जो हैं, ये अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग भाव हैं, जिनसे कि जिस मुख्य रस में भक्त स्थित है उस रस को ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। सात गौण रस, किसी को पता है कौन सा है ये सात गौण रस? हाँ, ये सात, ये सबसे पहला है हास्य। कोई भी पांच मुख्य रसों में स्थित भक्त हो, जब भगवान को प्रेम करता है उसमें कभी कभी हास्य भी आ जाता है, हंसी आ जाती है, तो स्वादिष्ट हो सकता है वो और ज्यादा। जैसे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ खेलते खेलते कभी हंसी मजाक करते थे तो उनका प्रेम और भी तीव्र हो जाता था। तो ये जो सात गुण उनका वर्णन करेंगे हम धीरे धीरे से। एक हास्य, दूसरा है अद्भुत।
ये सात रस ये पांच रसों की अलग,
ये अलग है, हम वर्णन करेंगे। अब पांच रसों में से एक जीव किसी एक रस में स्थित है, ठीक है, समझ ले कोई एक भक्त है जो सख्य रस में स्थित है, तो उस सख्य रस में वो भगवान से प्रेम करेगा, प्रेम का आदान प्रदान करेगा, और वो स्थायी भाव है उसके लिए। मतलब हमेशा उसका भाव वही होगा। लेकिन ये सात भाव जो हैं ये आएंगे और जाएंगे परिस्थिति के हिसाब से।
उनमें कभी कोई पाए जाते हैं ऐसे?
कभी कभी आएंगे परिस्थिति के हिसाब से। जैसे एक ग्वाल बाल का उदाहरण अभी हमने दिया, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे सब लोग हंसने लगते हैं, तो हास्य ये थोड़े समय के लिए आ गया। ऐसा नहीं कि ग्वाल बाल और कृष्ण हमेशा हंसते थे। कभी कभी ग्वाल बाल चिंतित भी हो जाते हैं, अरे ये बड़ा असुर आ गया क्या करना चाहिए, ये दावानल आ गया क्या करना चाहिए, तो कभी कभी हास्य आ जाता था। तो हास्य से ये उनके जो प्रेम है वो और भी बढ़ जाता था, ठीक है ना। इसका मतलब है ये गौण रस आते हैं और जाते हैं। जब वो निमित्त चले जाता है तो ये रस भी चले जाते हैं। ये निमित्त के ऊपर आधारित है, परिस्थिति के ऊपर। जैसे परिस्थिति है तो वो रस आ जाता है, मुख्य रस को स्वादिष्ट बनाता है, चले जाता है। समझ गए इस बात को आप? क्लियर है ना। फिर दूसरा है अद्भुत। अद्भुत मतलब चमत्कार, वाह, सेंस ऑफ वंडर, चमत्कार है भगवान। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, ओ कैसे धारण कर लिया, इतना छोटा सा बच्चा। और तीसरा है वीर, वीर रस। वीर रस, वीर रस में क्या है, भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। भक्त कभी भगवान से वीर रस में लड़ाई करता है, ग्वाल बाल कभी कुश्ती करते थे कृष्ण से, तुम्हें कौन बड़ो लोग तुम्हें आम शाम, जैसे चैतन्य कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में अन्य जगह। एक भक्त जो है ग्वाल बाल कृष्ण को ललकार रहा है, तुम कौन से बड़े लोग हो, तुम हम एक साथ हैं, आओ तो सही मैदान में देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। वीर रस का आस्वादन करने के लिए कभी कृष्ण को हराते थे, कभी कृष्ण से हार जाते थे। और उसी तरह से भगवान भी इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उनके भक्त से किसी ऐसे भक्त को नियुक्त करते हैं कि जाओ तुम भौतिक जगत में, मैं युद्ध करना चाहता हूं, इसका आनंद लेना चाहता हूं, तुम जाओ बड़े असुर बन जाओ। तो जय विजय चले आए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, उनका वध कर दिया। इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में ये रस का स्वाद भी कभी कभी आता है। तो ऐसा नहीं कि ग्वाल बाल कृष्ण के साथ हमेशा कुश्ती करते थे, नहीं, ये कभी कभी आता था, कभी कभी हास्य, कभी अद्भुत, कभी वीर, ये रस आते जाते, लेकिन सख्य रस स्थायी रूप से रहता है उनके लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद करुणा, करुणा की भावना बहुत, ये तो आप समझ गए करुणा। इसके बाद रौद्र, रौद्र मतलब गुस्सा। माता यशोदा को आया ना कभी गुस्सा कृष्ण के ऊपर, उसने मटका तोड़ दिया, अरे कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, बहुत गुस्सा आया। या ग्वाल बालों को गुस्सा आया किसी असुर के ऊपर कि कृष्ण के प्रति कैसे आक्रमण किया। फिर बिभत्स, बिभत्स, बिभत्स मतलब कोई दुर्घटना जैसे हो जाती है तो उस समय कैसे हताश हो जाता है भक्त, अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर भय, जब कालिया के पर्णों में फंसे हुए थे श्री कृष्ण, तो ब्रजवासियों को मन में क्या हो गया, भय हो गया ना कि क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा। तो हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, बीभत्स, भय, ये सात गौण रस हैं, ठीक है, जो कि जो मुख्य रस हैं उनका स्वाद बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जब भगवान भय का अनुभव करते हैं, यशोदा माई छड़ी लेके आती हैं तो भगवान हंसते नहीं है उस समय, भयभीत हो जाते हैं बहुत। और भयभीत होने कि वो नकल नहीं कर रहे, नाटक नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में भयभीत हो जाते हैं, उनकी लीला शक्ति के कार्य करती है ताकि भगवान को इसका स्वाद मिले, वात्सल्य रस का वो स्वाद वो और भी चख लें, उनके भक्त भी चख लें, ठीक है। धन्यवाद। तो ये सात गौण रस हुए। और आगे के और आखिर में, हाँ, अरे कृष्ण को बहुत भूख लगा है, अरे अरे कृष्ण जा रहे होंगे, उनको कांटे चुभ रहे होंगे, है कि नहीं, क्या होगा अब। करुणा की भावना हर समय नहीं, कभी कभी। ये विषय बहुत लंबा है, जिनको ज़्यादा इसके लिए अलग से विषय संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से सबका विश्लेषण किया है। अब आखिरी विषय लेंगे यहाँ का, और वो है कि दो प्रकार की आसक्ति होते हैं भगवान के प्रति, दो भाव होते हैं जिनमें कि भगवान से प्रेम किया जा सकता है। एक है ऐश्वर्य रति और दूसरा है केवला रति। ऐश्वर्य रति द्वारका एवं वैकुंठ में पाया जाता है और केवला रति वृंदावन में, गोकुल में पाया जाता है, ब्रजभूमि में केवल पाया जाता है। केवला रति केवल वृंदावन में पाया जाता है, ब्रजभूमि में, और किसी भी जगह में नहीं पाया जाता। अन्य जहां भी भगवान के रूप हैं, वैकुंठ लोक में हो, द्वारका में हो, अयोध्या में हो, मथुरा में हो, वो सब ये ऐश्वर्य रति है। तो ब्रजभूमि बहुत विशेष है। तो उसको केवला क्यों कहते हैं, क्योंकि केवला में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ये केवला आसक्ति, केवला रति जो है, ये ऐश्वर्य ज्ञान हीन है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है भक्तों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहां वृंदावन के भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे या नहीं देखते थे। अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो ऐश्वर्य का प्रदर्शन अवश्य उनके आंखों के सामने हुआ, लेकिन उनके प्रेम में, उनके निकटता में, उनके भाव में कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे प्रेमी है, ये मेरा बच्चा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आया, उसमें कोई मिलावट, कोई प्रदूषण नहीं आया। उनका जो शुद्ध भाव है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस ऐश्वर्य के प्रदर्शन से। कई बार भक्त गलत समझते हैं कि वृंदावन में ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि वैकुंठ जो है वो ऐश्वर्य धाम है और वृंदावन माधुर्य धाम है, ये तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रजभूमि में ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य है, उसका प्रदर्शन भी बारंबार भगवान करते हैं, परंतु इस ऐश्वर्य की वजह से जो ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, जो बहुत निकट है, जो बहुत मधुर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जब माता यशोदा, यहां पर उदाहरण भी देते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहां देते हैं कि जब माता यशोदा ने सोचा कि ये श्री कृष्ण जो है ये मेरा बच्चा है, और कृष्ण को बांध लिया, या जब भी श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा किया करते थे वृंदावन में, तो कभी कभी कृष्ण की पार्टी जो है, कृष्ण का दल हार जाता था, तो कृष्ण को दंड मिलता था कि ठीक है आप हार गए तो आपको दूसरे ग्वाल बाल को अपने कंधों पर बिठा कर ले जाना होगा। तो एक बार ऐसे ही खेल के समय कृष्ण जब हार गए तो उन्होंने श्रीदामा को अपने कंधे पे उठा दिया, साथ साथ में भद्रसेन ने वृषभ को अपने कंधों पे धारण किया, और प्रलंब नाम का एक असुर आया था, वेश बदल कर, ग्वाल बाल का वेश बदल पहनकर आया था, उसने बलराम को उठाया, वो बलराम की हत्या करना चाहता था, फिर बलराम ने तो प्रलंबासुर का वध कर दिया, आप सब जानते हैं वो कथा। तो ऐसे उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि वास्तव में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण या बलराम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भले करें या न करें, इसके ऊपर उस माधुर्य भाव का फर्क के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऐश्वर्य युक्त ज्ञान, ऐश्वर्य युक्त भाव है, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का प्राधान्य है। भगवान के महिमा को, भगवान की महत्ता को वो हमेशा ध्यान में रखते हैं, इसलिए उतनी निकटता से वो प्रेम नहीं कर सकते भगवान को। जैसे उदाहरण यहाँ चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और फिर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास गए, उनको प्रणाम किया, तब वसुदेव देवकी के मन में एक प्रकार का भय आ गया कि अरे हम, ये हमें प्रणाम कर रहा है लेकिन ये तो भगवान है, तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। अरे कि ये मेरे माता पिता है, ये मुझसे भयभीत हो जाए, मुझे भगवान माने तो फिर कैसे आनंद आएगा, मुझे वात्सल्य का आनंद कैसे आएगा। तो फिर श्री कृष्ण रोने लगे, फिर माता यशोदा हाँ ठीक है ठीक है, फिर वात्सल्य उनका फिर से जागृत हो गया। तो कृष्ण ने देखा कि जब तक मैं बच्चे की तरह नहीं रहूं तब तक उनका जो वात्सल्य प्रेम है वो टिकेगा नहीं। तो जब उन्होंने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, कंस का वध किया, तो उनके निकट के प्रेम में विघ्न आ गया, इसलिए उस वात्सल्य प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए वो रोने लग गए। फिर माता यशोदा के मन में अब लगा, अरे ये तो बच्चा है मेरा, फिर से प्रेम करना शुरू कर दिया। और एक उदाहरण देते हैं, और वो है तब जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन तो कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के साथ साथ बैठते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, कंधे पे हाथ रखकर चलते थे, लेकिन जब विराट रूप देखा, कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रदर्शन देखा, तो उस समय अर्जुन को भय लग गया। और बाद में उन्होंने प्रार्थना की, भगवद गीता के 11वें स्कंद में आता है कि कृष्ण मैंने आपसे बहुत अपराध किया, आप तो परम सत्य हैं। विराट रूप को देखकर अर्जुन कहने लगा, अरे मैंने तो बहुत गलती की, कभी कभी मैंने आपको मित्र कहा, हे सखा हे केशवा, इसलिए मैंने आपके साथ खाया हूँ, आपके साथ सोया हूँ, आपके साथ पिए, बहुत कुछ मैंने किया, तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो जो सखा भाव है, सख्य रस का भाव था, उसमें एक विघ्न आ गया, वो मिठास रहा नहीं। फिर जब कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य, अपना जो विराट रूप है वो ओझल करा दिया, फिर से अर्जुन ठीक हो गया। हाँ, ये तो मेरे मित्र हैं, ठीक है। तो ये है ऐश्वर्य भाव, मथुरा का, द्वारका का, वैकुंठ का, ये ऐश्वर्य भाव है जहां पे ऐश्वर्य ज्ञान का प्राधान्य है। इसके विपरीत गोलोक वृंदावन में केवल मधुर भाव है। कुछ भी हो, माता यशोदा नंद महाराज यही सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा है। कुछ भी हो, ग्वाल बाल यही सोचते हैं कि कृष्ण हमारा मित्र है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ऐसे सुंदर उपदेश दिए। हमने केवल संक्षिप्त रूप में कहे हैं इन चीजों को। और फिर उनको कहा उन्होंने कि ठीक है, मैंने जो अब तुम्हें ये ज्ञान दिया है, ये जान लो कि बहुत संक्षिप्त रूप में दिया है। यही भक्ति रसे कोरी लन दिग दर्शन, इहार विस्तार मन कोरी हो भवन। यही भक्ति रसेर कोरिलान दिग्दर्शन, ये भक्ति रस का दिग्दर्शन मतलब एक केवल सामान्य रूप से एक ऊपर ऊपर से मैंने ज्ञान दिया है आपको। इहार विस्तार मने कोरिहो भावान, तो अपने मन में अब इस ज्ञान का विस्तार करो, तुम अच्छे ग्रंथ लिखो। जो मैंने तुम्हें रस तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व के बारे में बताया है, अभी इसके बारे में विचार करो और अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखो। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में सतत स्मरण करता है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम बहुत ही शीघ्र प्रकट हो जाता है। हालांकि कोई अज्ञानी है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम के सिंधु के उस पार वो पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण की कृपा से अगर वह सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहेगा तो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेशों को समाप्त किया और रूप गोस्वामी से आलिंगन किया और फिर वहां से निकल पड़े वाराणसी के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर प्रेमानंदे। तो आपके अन्यों को कोई क्लास में जाना है, अभी 1:30 बजे किसी का क्लास है, तो आप जिनका क्लास है आप जा सकते हैं। जिनको प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं 5 मिनट के लिए।
इन रसों का सम्मिश्रण भी तो है, मिश्रण भी तो है। जैसे अर्जुन जब विराट रूप उनके सामने आया, उसके बाद फिर से जब अपने रूप में आए तो उस वक्त उनकी क्या अवस्था है?
सख्य सख्य तो है, लेकिन ये अद्भुत चमत्कार, अरे ये क्या हो गया, ये भगवान भय, अद्भुत और भय, ये दोनों रस आ गए उस समय, गौण रस। मूल रस तो सख्य रस है, लेकिन उसमें अभी ये दो रस आ गए। लेकिन क्योंकि उनका भाव ऐश्वर्य भाव है तो सख्य भाव थोड़ा संकुचित हो गया, जो कि गोलोक वृंदावन में ऐसे नहीं होता। जब कृष्ण भगवान ने असुरों का वध किया तो ग्वाल बालों ने ये नहीं सोचा कि ये तो भगवान है, इनकी पूजा करेंगे अभी। उन्होंने यही सोचा कि हम लोग तुम्हारे साथ थे इसलिए हो गया कृष्ण। और कभी कृष्ण की प्रशंसा भी करते थे, वाह वाह कितने शक्तिशाली हो, कितना बढ़िया काम किया तुमने कृष्ण, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐश्वर्य के प्रदर्शन से गोलोक वृंदावन में प्रेम संकुचित नहीं होता, मूल रस मुख्य रस संकुचित नहीं होता, लेकिन वैकुंठ में ऐसे होता है। ठीक है, आज का दिन थोड़ा कठिन था, लेकिन देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक रूप को चैतन्य महाप्रभु ने प्राथमिक ज्ञान से लेकर ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक, चट्टानों तक वो हम सबको ले गए रूप गोस्वामी के माध्यम से। और आज के दिन बहुत जल्दी जल्दी में हमने संक्षेप में ये सब भी है, नहीं तो विस्तार में काफी दिया हुआ है चैतन्य चरिता में। ठीक है,
मुझे अजीब सा प्रश्न है ना, कई बार मन में भी आता है, जैसे शांत भक्त लोग ने बताया इंद्र में भी नचा तुम्हारा, और फिर मतलब इन शांत रस में कहते हैं या मतलब कभी माधुर्य रस में इनको इस बारे में ज्ञान नहीं है या मतलब किस तरह से इनको समझा जाए, क्योंकि ऐसे अगर लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता चल गया या
नहीं। जीव का स्वरूप जो है वो स्थित होता है, वो बदलता नहीं है साधारणता। अगर कोई सख्य में है तो वो सख्य में ही रहेगा, उसको सख्य में ही ज्यादा आनंद है। वो ये नहीं सोचा गया कि अरे वात्सल्य तो सख्य से ऊंचा है तो मैं वात्सल्य में प्रेम करूंगा कृष्ण से। उसको अपने रस में कोई कमी की अनुभूति नहीं होगी, कोई अभाव नहीं महसूस होगा उसे। हालांकि वो जानता है कि वात्सल्य रस और मधुर रस ऊंचा है, श्रेष्ठ है, फिर भी अपनी जगह वो संतुष्ट है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी जानते हैं कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उनको श्री रामचंद्र की सेवा ही ठीक है, उनको और कोई रस सूट नहीं करता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब उन्होंने श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। यह है हृदय में, इसको प्रकट कराना है, इसको जागृत कराना है भक्तों के संग में आकर। सब शांत रस में आते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में शांत रस का प्राधान्य नहीं है। शांत रस है भी, लेकिन सब अन्य रसों की मधुर रस की सहायता करते हैं। गोलोक वृंदावन में जो शांत अन्य कितने भी रस हैं वो सब मधुर रस को बढ़ाते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका पोषण करते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन इसीलिए माधुरी धाम कहा जाता है, क्योंकि ये मधुर रस जो है प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अन्य रस अपने आप में भी अपने जगह में भी ठीक है, लेकिन वो ज्यादातर मधुर रस का पोषण करती है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब सबका बहुत धन्यवाद है, आप सब पांचों दिनों के लिए आए, बड़े शांति से ध्यान से आपने ये सब सुना। हरे कृष्णा।
कृष्ण का जो उनके रानी से संबंध रस में नहीं और वो भी तो माधुर्य रस में नहीं।
बिल्कुल माधुर्य रस में है, लेकिन ऐश्वर्य भाव में है।
ऐश्वर्य
और गोपियों को जो कृष्ण के साथ वो भी माधुर्य भाव में, लेकिन केवला भाव या माधुरी भाव। नहीं, वो तो आ गया, साधु संघ में आ गया, वो साधु संघ में आ जाता है। साधु संघ में गुरु प्राप्त करना सब वो सब आ जाता है, फिर गुरु के आदेश अनुसार ही हम भजन किया करते हैं। हाँ, वो सब आ जाता है, साधु संघ में आ जाता है। हरि बोल।